आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो एंड नमस्कार बच्चों, मैं आपकी दोस्त अंगीशा। आज हम सब मिलकर एक नई कहानी पढ़ेंगे, एक नई कहानी के बारे में जानेंगे। क्या आप सबने कभी सोचा है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था या हम सब आज़ाद हुए थे, तो उससे पहले लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल था, या जो हम जैसे छोटे छोटे बच्चे थे उन सब के लिए पढ़ना लिखना कितना मुश्किल रहा होगा। क्या वो हमारे तरह, जैसे हम अभी आसानी से हर दिन सुबह उठते हैं और स्कूल के लिए निकल लेते हैं और फिर वापस स्कूल में खेलते हैं, आधी छुट्टी में खेलते हैं और स्कूल से वापस आते वक्त खेलते हैं, फिर अगले दिन अपनी स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर स्कूल में आ जाते हैं, तो क्या वैसे ही आज़ाद होने से पहले, हम सब आज़ाद होने से पहले क्या वैसे ही रहा होगा? क्या लोगों के लिए, बच्चों के लिए इतना ही आसान रहा होगा स्कूल जाना, पढ़ाई करना, या कुछ अलग रहा होगा, कुछ मुश्किल रही होगी? तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस ऑडियो में देखेंगे, इस कहानी में देखेंगे, क्योंकि ये कहानी एक छोटी सी लड़की की, जो कि हम जैसी है, ठीक है, आपकी उम्र की ही एक छोटी सी लड़की है, तो वो आज़ादी से पहले उसको कितनी तकलीफ़ हुई पढ़ने के लिए, उसको कितनी तकलीफ़ हुई रहने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं जो उसके बारे में जानेंगे पढ़ेंगे, और इतनी सारी मुश्किलें होने के बाद भी वो लड़की कितनी निडर थी और बहादुर थी, वो भी हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी सी कहानी है ये, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है जो आपके बुक में ही दी गई है, ठीक है। तो ये पेज नंबर आपके बुक के पेज नंबर 66 पे है, तो आप सब पेज नंबर 66 पे आ जाएं, चैप्टर नंबर 13 पार्ट 13, और इस कहानी का शीर्षक है गुरु भक्त कालीबाई। तो इस टाइटल से आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है। गुरु मतलब हमारे जो शिक्षक होते हैं, और उनके लिए ये जो कालीबाई थी वो कैसे भक्त रही, ठीक है, ऐसा क्या किया उन्होंने कि वो अपने गुरु की भक्त कहलाई। जैसे हम हमारे सबकी टीचर हैं, हम सबके टीचर हैं, तो वो उसकी टीचर इतने, ऐसे क्या उन्होंने महान काम किया कि ये जो कालीबाई थी, उनकी जो शिष्य थी, वो अपने गुरु के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया या कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण वो अपने गुरु की भक्त कहलाई। तो ये बहुत ही अच्छी सी कहानी है, चलिए हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं, जानते हैं एक और नई और अच्छी कहानी। पेज नंबर 66 मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आदिवासियों का गढ़ है दक्षिण राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले में एक गांव है रास्तापाल। तो आदिवासियों का जो गढ़ है वो दक्षिण राजस्थान है। राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है वहां पे आदिवासी लोग ज्यादा मिलते हैं। इस क्षेत्र में एक जिला है डूंगरपुर। आप सबने नाम सुना होगा डूंगरपुर जिला का। वहां पे एक गांव है, उस गांव का नाम है रास्तापाल। तो ये कहानी इस गांव की है, हमारे राजस्थान की है, हमारे राजस्थान के जिले डूंगरपुर की है। आगे लिखा है, आजादी से पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। उन दिनों यहाँ एक पाठशाला चलती थी, इसे प्रजा मंडल चलाती है। इस पाठशाला के संरक्षक और इसमें शिक्षण का काम करते थे श्री सिंह भाई रोन। तो आजादी से पहले की कहानी है, आजादी से पहले का समय दिखाया है इसमें, और बताया है कि उस समय आजादी से पहले राजस्थान के जिले डूंगरपुर में और गांव था रास्तापाल, यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं थी। उन दिनों एक पाठशाला चलती थी, वो भी प्रजा मंडल चलाता था, जो वहां की जनता थी, वहां की जो लोग थी, वही इस पाठशाला को चलाते थे, पाठशाला स्कूल, ठीक है। वहां इस पाठशाला के जो संरक्षक थे वो थे नाना भाई खान। संरक्षण मतलब होता है देख रेख करने वाला, ठीक है, जो इस पाठशाला की देख रेख करते थे वो कौन करते थे, श्री नाना भाई खान। और शिक्षण मतलब पढ़ाने का काम कौन करते थे, श्री सिंगाबाई रोड। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी। इन बालिकाओं में एक भील बालिका भी थी, कालीबाई कलासुआ। तो इस पाठशाला में जो उस गांव के बच्चे थे, बालक लड़के बालिका लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते थे, और उन बच्चों में से एक बच्ची थी जिसका नाम था कालीबाई कलासुआ। उसकी उम्र थी 13 वर्ष। उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर दोहरी मार थी। एक ओर तो अंग्रेजों का कठोर शासन था और दूसरी ओर सामंत सताते थे। हर व्यक्ति आजादी चाहता था। तो जो लड़की थी उसकी उम्र थी 13 वर्ष। उस समय, उन दिनों, मतलब आजादी से पहले, वहां उस क्षेत्र के, उस गांव के जो लोग थे उन पर दोहरी मार थी। मतलब उन पे दो तरह से बहुत ही ज्यादा आपत्ति आई हुई थी। पहली क्या, एक तो अंग्रेजों का कठोर शासन, ठीक है, एक तो अंग्रेजों ने उन्हें परेशान किया था, और दूसरी ओर जो सामंत, जो जमींदार होते हैं ना, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स कहते हैं, जमींदार उन्हें सताते रहते थे। वहां का हर एक व्यक्ति आजादी के लिए मांग करता था। हर एक व्यक्ति अंग्रेज के शासन से और सामंत के शोषण से आजादी चाहता था, ठीक है। फिर लिखा है, उस समय पूरे देश में आजादी की लहर थी। राजस्थान भला कब पीछे रहता। प्रजामंडल आजादी का विचार इन पाठशालाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था। उस समय पूरे भारत में आजादी की लहर थी, मतलब सारे जो भारत के लोग थे वो आजादी मांगने के लिए जाग उठे थे। तो इसके, इस आजादी के दौर में राजस्थान कैसे पीछे रहता। तो वहां की जो प्रजामंडल थी, वहां के जो जन जनता थे, उन सब ने भी आजादी की विचार जो थी वो पाठशालाओं के द्वारा लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना शुरू किया। सिंगाभाई बालकों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाते तो कभी सामंती शोषण की। कालीबाई उन्हें ध्यान से सुनती, सुनते सुनते उसका खून खौलने लगता। सिंगाभाई उसके लिए बहुत ही आदरणीय थे। भील बाला कालीबाई में भी एकलव्य की सी गुरु भक्ति के संस्कार थे। वह भी अपने गुरु की परम भक्त थी। तो जो सेंगाबाई भाई थे, सेंगाबाई कौन थे, जो वहां पे शिक्षण का कार्य देखते थे, पढ़ाने का कार्य देखते थे, तो वो बच्चों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाते थे, तो कभी जो सामंती है, मतलब जो बड़े जमींदार हैं, उनका शोषण, कि वो किस तरह आम जनता को परेशान करते हैं। तो उनमें से जो कालीबाई थी, जो कि आप जैसी ही 13 वर्ष की लड़की थी, उनकी शिष्य थी, ठीक है, वो भी उनकी कहानियों को सुनती थी और सुनते सुनते उसका खून खौलने लगता था, मतलब उसे बहुत ही गुस्सा आता था। सेंगाबाई उसके लिए बहुत ही आदरणीय थे। सेंगाबाई उसके टीचर थे और वो अपने टीचर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी। भीलबाई जो थी वो भी गुरु एकलव्य, सुना है आपने, एकलव्य जो अपने गुरु के लिए अपने अंगूठे को काट के दे दिया था उन्होंने दान में, शिक्षा दान में, तो वैसे ही जो सेंगाबाई थी, कि अगर उसके गुरु ने कुछ उसे कहा तो वो जरूर उनकी सारी बात मानती थी, ठीक है, वो भी अपने गुरु की परम भक्त थी। फिर क्या हुआ, एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहां नाना भाई भी उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण किया, जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जगे। तो एक बार की बात है, जो प्रजामंडल थी, जो पूरा उनका कमिटी था, ठीक है, जो कि हर चीज का देखरेख करती थी और जिसके द्वारा पाठशाला चलती थी, तो उनकी मीटिंग हुई, ठीक है, उन सारे सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहां पे जो नाना भाई थे वो भी उपस्थित थे। फिर उस बैठक में, उस मीटिंग में नाना भाई ने ये प्रण किया कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं, हमारे गांव में जो पाठशाला है, सिर्फ एक ही पाठशाला है, उसको मैं कभी बंद नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा रहा। वो वास्तव में चाहते थे कि हर एक बच्चा अच्छे से पढ़े, सबको शिक्षा मिले और हर एक बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना हो। अगले पेज पे आ जाओ। किंतु ये बात रास्तापाल के जागीदार को नहीं पची। यहाँ देखो पिक्चर में बैठक चल रही है ना उनकी, तो इसमें नाना भाई भी थे जहाँ उन्होंने प्रण किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, किंतु ये बात रास्तापाल के जागीदार को नहीं पची। वह नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। उसने इस पाठशाला को बंद करने का एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। नाना भाई को इस षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने घर घर जाके लोगों को समझाया। एक भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। तो जो जागीदार था, जागीदार मतलब राजा का सामंत, ठीक है, जो राजा के नीचे काम करता था, मतलब कि वह भी एक जमींदार ही था। तो उस जागीदार को जो नाना भाई थे उसका प्रण अच्छा नहीं लगा, ठीक है, उसको ये बात पची नहीं कि वह कैसे ऐसे प्रण ले सकता है और वो बिना राजा की अनुमति कैसे ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात सुनकर उसने सोचा कि मैं ऐसा एक प्लान करता हूँ, एक षड्यंत्र रचता हूँ जिससे कि गांव के लोगों को मैं नाना भाई के खिलाफ कर दूँ। तो उसके इस षड्यंत्र के बारे में, इस प्लानिंग के बारे में जो नाना भाई थे उनको पता चल गया था। तो नाना भाई ने गांव में हर एक के घर जाकर उनको बताया कि जो जागीदार है वो तुम्हें एक प्लान के लिए बुलाएगा, लेकिन तुम जाना नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमें भड़का रहा है, ठीक है, और वो अच्छे मकसद से हमसे काम लेने नहीं आ रहा। तो ऐसा सुनकर नाना भाई के गांव के सारे लोगों ने बोला हाँ ठीक है, हम नहीं जाएंगे। तो उस बैठक में जो कोई भी गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं गया। तो गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीदार झल्ला उठा। तो जब गांव के बैठक में लोग नहीं आए तो जो जागीदार था वो बहुत ही परेशान हो गया, गुस्सा उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने सामंत को सारी घटना नमक मिर्च लगाकर कह दी। तो जो जागीदार ने बैठक बुलाई थी उसमें लोग नहीं आए, गांव के लोग नहीं आए, तो ये देखकर वो बहुत ही झल्ला उठा, बहुत ही गुस्से में आया, पागल हो गया। फिर उसने सोचा कि मैं ये सारी घटना जो है नमक मिर्च लगाकर उसने दूसरे अपने से ऊपर अधिकारी को सुना दी, ठीक है। नमक मिर्च लगा के सुनाना मतलब क्या होता बच्चों, कि बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, जो सच नहीं भी होगा वो भी उसने झूठ मूठ जोड़कर और उनको भड़काऊ जैसी बातें सुना दी। फिर अगले दिन ही रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दल बल सहित रास्तापाल पहुंचे। जो अगले ही दिन ये घटना सुनने के बाद जो सामंत थे उसने अगले ही दिन जो रियासत के पुलिस थे उनके अधिकारी और जिला न्यायाधीश के पूरी टीम को दलबल को रास्तापाल पहुंचाए, ठीक है, वो पहुंच गए। फिर 19 जून 1947 का दिन था। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत पर गई हुई थी। पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई दोनों ही उपस्थित थे। तो ये बात है 19 जून 1947 की। उस दिन रास्तापाल में जो पाठशाला थी उसके सामने एक ट्रक आकर रुकी। उस समय पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई दोनों ही थे, लेकिन जो काली भाई थी वो खेत में गई हुई थी, ठीक है, वहां काम करने गई थी। फिर क्या हुआ होगा वहां पे, जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा पाठशाला बंद करो और चाबी हमें दो। तो जो न्यायाधीश थे उन्होंने उन सेंगा भाई से और नाना भाई से बोला कि इस स्कूल को, इस पाठशाला को अभी बंद करो और इसकी चाबी हमें दो। क्यों क्यों वो बंद कराना चाहते थे? क्योंकि वहां पे लोगों में जो सामंत है और अंग्रेज की सरकार है उसके खिलाफ उनको बताया जा रहा था ताकि वो अपनी आजादी के लिए खुद लड़े, ठीक है, और जो वहां की सरकार थी, अंग्रेज की सरकार थी, वो नहीं चाहती थी, उनको ये चीज पता चल गया था, तो इसलिए वो पाठशाला को बंद कराना चाहते थे, ठीक है। तो फिर इसी पर जो सेंगा भाई थे उन्होंने बहुत ही विनम्र होकर उनसे कहा न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, हम आपके काम को ही तो कर रहे हैं, बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो कोई न्याय की बात नहीं है। जिला न्यायाधीश यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गया और बोले तुम मुझे न्याय सिखाओगे? छोटे मुंह बड़ी बात करते हो, सिपाही हो, इसे ट्रक से बांध कर घसीटो। तो जब सेंगा भाई ने न्यायाधीश से बहुत ही प्यार से बोला कि हम तो आपका ही काम कर रहे हैं, आपका काम तो पूरे गांव में शिक्षा देना है, तो हम तो वही काम कर रहे हैं, अगर आप हमारे पाठशाला को बंद कराएंगे तो वो तो उचित बात नहीं है, वो तो सही नहीं है, ये तो न्याय नहीं है, आप तो न्यायाधीश हैं, आप तो सबको न्याय देते हैं, लेकिन आप खुद ही अन्याय कर रहे हैं। तो ये सुनकर जो न्यायाधीश था, अब वो तो ऐसे था कि इसने मुझे ऐसे कैसे जवाब दिया, तो वो बहुत ही गुस्से में आया और उसने अपने सैनिकों को बोला कि इसे तुरंत ट्रक से बांधकर घसीटो। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने भी नाना भाई से कही। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं, आप इसे बंद क्यों करवाते हैं, हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा। और यही पाठशाला बंद होने की बात जो थी वो पुलिस अधिकारी ने नाना भाई से कही, तो नाना भाई ने भी हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आप ये पाठशाला क्यों बंद करा रहे हैं, और वैसे ही भी ये पाठशाला प्रजा मंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं, तो हम आपके आदेश पे ये बंद भी नहीं करवा सकते, और हम तो अच्छा काम ही कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनका। अब ऐसा सुनकर पुलिस अधिकारी उत्तर कैसे सहन कर सकता था, उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूंसों, डंडों, बंदूक के गुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की, वे बुरी तरह घायल हो गए। तो जब नाना भाई ने पुलिस अधिकारी से ऐसे बोला, तो पुलिस अधिकारी ऐसे उत्तर कैसे सुन सकता था, वो भी बहुत ही ज्यादा घमंडी था, तो उसने भी अपने सिपाहियों को ऐसे संकेत दिया कि इसे पीटो। तो सारे सिपाही जो थे उसको घेर लिए और उसको लात, मुक्का, घूसा, फिर जो बंदूक की कुंदे थी, जो बंदूक का पीछे वाला हिस्सा है, उससे मारा, और इतना मारा कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा, और तभी जो सेंगा भाई थे उनको भी ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। देखो आपके पेज में दिया है ना, ड्राइंग दी है। नाना भाई से यह नहीं देखा गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में भी वे खड़े होकर दौड़ने लगे, उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से गिर पड़े और ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे ही नहीं। तो क्या हुआ, जब सेंगा भाई को नाना भाई ने देखा कि ट्रक से बांध कर घसीटा जा रहा है, तो उनसे ये चीज देखी नहीं गई। वो चाहते थे कि वो सेंगा भाई की मदद करे, तो उनकी मदद करने के लिए वो इतने घायल अवस्था में थे, इतनी उन्हें चोट लगी थी, फिर भी वो खड़े होकर दौड़ने लगे और उनको बचाने के लिए गए। तभी जो पीछे से एक सिपाही था उसने अपनी बंदूक के कुंदे से उनको बहुत जोर से मारा। तभी जो नाना भाई थे वो धड़ाम से गिर पड़े और फिर ऐसे गिरे कि वो कभी नहीं उठे, मतलब उनकी वही उन्होंने वही अपना दम तोड़ दिया। सेंगा भाई को ट्रक से बांध कर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुष की भीड़ जमा हो गई थी, किंतु किसी में हिम्मत भी नहीं थी कि सेंगा भाई को बचाते। तो सेंगा भाई को दूसरी तरफ जो ट्रक से बांध कर घसीटा जा रहा था और उस पाठशाला के बाहर गांव के बहुत सारे जो स्त्री और पुरुष थे उन सब की भीड़ जमा हो गई थी, सब घेर के देखने लगे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई जाकर सेंगा भाई को बचाए। तभी जो थी काली बाई आई, तो काली बाई उस समय खेत से आ रही थी, उसके सिर पर घास का गठरा था, हाथ में थी हंसिया। अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भाएं तन गई, उसे रहा नहीं गया, उसने आओ देखा ना ताओ घास का गठरा वहीं जमीन पर फेंक दिया। उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो। यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी। तो अब क्या हुआ था, जो नाना भाई थे उनको तो सिपाहियों ने मार दिया था, फिर दूसरी तरफ से जो काली बाई थी वो अपने खेत से वापस आ रही थी, उसके सर पे घास की गठरे थे और हाथ में हंसिया था। फिर उसने देखा कि उसके जो गुरुजी थे, उसके जो टीचर थे, उसको जो अंग्रेज के सिपाही हैं उन्होंने ट्रक से बांध कर उन्हें घसीट रहे हैं। तो ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुई, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। ठीक है, फिर उसने आओ देखा ना ताओ जो सर पे गठरा था
ना इधर देखा ना उधर, जो सर पे गढ़ रहा था उसको जमीन पर फेंका, और वो बहुत ही आग बुलबुला होते हुए उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरु जी को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो। और ये कहते ही बिजली की तरह वो ट्रक पर लपक गई, और वो ऐसे कहती ही वो भागते हुए ट्रक के पास आ गई। तो क्योंकि उसे देखा नहीं जा रहा था कि उसके टीचर के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा था, उन्हें ट्रक से बांध कर घसीटा जा रहा था, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो उनको बचाने के लिए ट्रक के पास कूद पड़ी। ठीक है, फिर उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिया से एक झटके से काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह से जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। और उसे बचाने के लिए कुछ औरतें थी वो भाग कर आई, उन पर निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसाई। तो वो उसने क्या किया, वो ट्रक के पास आ गई, लपक पड़ी और उसने झटके से जो रस्सी थी उसे काट दी। तो इससे जो थे उनके गुरुजी तो बच गए, जो सिंगा भाई थे वो बच गए, लेकिन अफसोस, जो सिपाही थे उन्होंने कालीबाई पर गोलियों की बरसात कर दी। उससे गोलियों से पूरा उस पर बहुत सारी गोलियां चला दी। वह उसे बचाने के लिए वहां की जो बहुत सारी औरतें थी वह सब भी आगे आई, लेकिन उन पर भी जो पुलिस वालों ने गोलियां बरसा डाली। फिर अगले पेज पे आ जाओ। इस तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई। आपको जैसे तस्वीर में दिख रहा होगा, जैसे कालीबाई को सिपाहियों ने गोलियों से पूरी भून दी थी, तो वहां पे एक तरफ नाना भाई की शव पड़ी थी और दूसरी तरफ खून से लथपथ कालीबाई की। तो ये देख के गांव वालों पर क्या बीती होगी। फिर क्या था, अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मरु ढोल का मातमीय स्वर गूंज उठा। देखते ही देखते हजारों भील रास्ता पाल में एकत्र हो गए। विकट स्थिति को समझकर नाने भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए। तो ये जब अवस्था देखी गांव वालों ने कि इस तरीके से जो न्यायाधीश है और जो पुलिस के जो अधिकारी और उनके जो सिपाहियों ने हमारे नाना भाई और इस मासूम सी छोटी सी बालिका को इस तरह से मार डाला, तो ये देख के गाँव के सारे जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। और उनके बीच जो मातम का आवाज था, जो शोक का दुख का भारी आवाज था, वो पूरा गूंज उठा। ठीक है, तो उन सब ने फिर जो पुलिस अधिकारी और उनके सिपाही है उन सबको मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था। अब वो उन्होंने सोचा कि हम अब इन्हें यहाँ से बचकर हम जाने नहीं देंगे। तो ऐसी हालात देखकर जो वहाँ की जो लोग थे, जो सिपाही थे, वो सब जो हत्यारे थे जिन्होंने नाना भाई और कालीबाई को मारा, वो ऐसा समझकर कि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है और उनके लिए लोग अभी बहुत गुस्से में हैं और वो मारे भी जा सकते हैं, ऐसा देखते हुए वो तुरंत वहां से भाग खड़े हुए, मतलब वो वहां से भाग गए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। फिर जो कालीबाई थी उसको वहां के जो अस्पताल में वहां पे भर्ती कराया गया। 40 घंटे तक वो बेहोश रही और उसके बाद वो उन्होंने दम तोड़ दिया, मतलब कि वो वहीं मर गई। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आजादी की अलख जगा गई। तो अब कालीबाई तो शहीद हो गई थी, लेकिन उसने अपने गुरुजी को, सेंगा भाई को बचा लिया था। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, एक छोटी सी बच्ची जो कि समय से पहले ही बुझ गई, लेकिन उसने गांव वालों के दिलों में, हजारों के दिलों में जो उस वक्त आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन सबको ये चीज सिखा गई कि इन अत्याचारियों से हमें आजादी चाहिए, हमें आजाद होना है और अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो ये लोग हमारा ही और शोषण करेंगे, हमें ही और अत्याचार हम पर करेंगे। तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें मिलकर आजादी के लिए लड़ना है और डट कर लड़ना है। तो ये कहानी असली घटना पे आधारित है। यानी ये जो छोटी सी बालिका थी वो भले छोटी थी लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा वीर और मनोबल था, जो कि उसको अंतिम क्षण तक डराया नहीं, उसे निर्भर रखा और उसने अपने इसी निर्भरता के साथ अपने गुरुजी को भी बचा लिया, और वह भी चाहती थी कि हमें आजादी मिले। तो बच्चों अब आपको समझ आया कि उस वक्त कितना मुश्किल रहा होगा पढ़ना, उस समय कितने लोगों ने अपनी जान दी होगी हम इस भारत को आजाद कराने में, हम सबको आजाद कराने में, जिसके कारण हम इस वक्त इतने सुख सुविधा के साथ जी रहे हैं। हम पे कोई ऐसा अंग्रेजी शासन नहीं है जो हम पे अत्याचार कर रहा हो, या कोई ऐसा नहीं है जिससे हम आजाद ना हो। ठीक है, तो उनके बहुत ही ज्यादा बलिदान रहे हैं, बहुत ही महान पुरुष, महान महिलाएं और कई छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है हमें आजाद कराने में। उसके बाद ही आज हम इतने अच्छे से, हम आराम से स्कूल में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, हम सबको मौका मिला है पढ़ने का, हम सबको ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है, हम सबको यह मौका मिला है कि उनकी जो मेहनत है, जो उन्होंने इतनी मुश्किल से हम सब के लिए अपने प्राण को त्याग कर हमें आजाद कराने की लड़ाई में अपने आप को त्याग दिया, तो उनके इस त्याग को, उनके बलिदान को हम बेकार ना होने दें। हम भी जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है, हम रोज आ रहे हैं पढ़ने के लिए स्कूल में, तो उस ज्ञान को हम अच्छे तरीके से लें, अच्छे तरीके से पढ़ें और कुछ ऐसा करके दिखाएं जो कि भारत के ही उन्नति और प्रगति में काम आए। तभी तो हम साबित कर पाएंगे कि उनकी जो बलिदान थी वो व्यर्थ नहीं हुई, वो बेकार में बर्बाद नहीं हुई, क्योंकि वो आज भी जितने भी महान पुरुष, महिलाएं और लोग, बच्चे थे जिन्होंने अपने अपने प्राणों की बलिदान दी, वो आज भी हमें देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि हम, उन्होंने जो इतना कष्ट सहा, इतनी जो बलिदान दी, उसके बदले हम क्या कर रहे हैं। हमें आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए, तो हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो इसके लिए हमें ज़रूर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो देखे और वो ये देखे कि हम सही में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, आपने बहुत कुछ समझा होगा, और आपने ये भी समझा होगा कि जब हम इस भारत में भी नहीं आए थे, इस देश में भी नहीं आए थे, और आज़ादी के लिए जितने लोग थे आज़ादी से पहले जो लड़ रहे थे, उनको कितनी मुश्किलें आई होंगी हमें आज़ादी दिलाने के लिए, तो हमें उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसके लिए आप सब जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी इस समय आपका कार्य है, आप है बच्चे, आपका कार्य है पढ़ना, समय पर उठना, समय पर सोना, खेलना कूदना और बड़ों का आदर करना, और अपने हर एक दिन कुछ ऐसा अच्छा नया काम करना जो दूसरों के हित में हो, जो दूसरों की भलाई करे। हमें कभी दूसरों के बुराई के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तो बच्चों ये थी कहानी, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस कहानी को आप अपने घर में जाके आज जरूर सुनाएंगे कि हमारे राजस्थान के जिले डूंगरपुर में एक ऐसी वीर बालिका थी जिसने इस तरीके से अपना, अपने गुरुजी को बचाने के लिए, अपने आप को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ पड़ी। और इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगले ऑडियो में पूरा कर लेंगे। तब तक मैं आशा करती हूँ आप इस कहानी को हर एक के पास पहुँचाओगे, हर एक को सुनाओगे। नमस्ते बच्चों।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।